नमस्कार. रेडिओ एम पी एस सी गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमीमध्ये मी आरजे तेजल आपल्या सगळ्यांचे सहर्ष स्वागत करते. जाणून घेऊया चालू घडामोडी. संपूर्ण जगात दर 33 तासांनी 10 लाख लोक गरिबीच्या खाईत जात आहेत. या दराने या वर्षी किमान 26.30 कोटी लोक दारिद्र्य रेषेखाली जाण्याची शक्यता आहे. ऑक्सफॅम इंटरनॅशनलने स्वित्झर्लंड मधील दावोस येथे वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या बैठकीत प्रॉफिटिंग फ्रॉम पेन या अहवालात हा दावा केला आहे. मागील दशकांच्या तुलनेत जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती झपाट्याने वाढल्याचे अहवालात म्हटले आहे. दावोस मध्ये वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमची वार्षिक बैठक सुरू आहे. ऑक्सफॅम इंटरनॅशनलने आपल्या अहवालात सांगितले की कोरोना महामारीच्या काळात जगात 30 तासांनी एक नवीन अब्जाधीश उदयास आला आहे. उलट यावर्षी आता दर 33 तासांनी 10 लाख लोक गरिबीच्या खाईत जाणार आहेत. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम ही सार्वजनिक खासगी भागीदारीची आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे. दावोस मध्ये 2 वर्षांनंतर त्याची बैठक होत आहे. महामारीच्या दरम्यान 1573 लोक नवीन अब्जाधीश झालेले आहेत. ऑक्सफॅम संस्थेने म्हटले की त्यांना भीती वाटते. यावर्षी दर 33 तासांनी 10 लोकांच्या दराने 26.30 कोटी लोक अत्यंत गरिबीचे बळी पडतील. कोविड-19 पहिल्या 2 वर्षात अब्जाधीशांच्या संपत्तीत गेल्या 23 वर्षांपेक्षा जास्त वाढ झाली. जगातील अब्जाधीशांची एकूण संपत्ती आता जागतिक GDP 13.9% इतकी आहे. 2000 ही संपत्ती 4.4% होती, जी आता 3 पटींनी वाढली आहे. यानंतर वळूया पुढील बातमीकडे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जोसेफ आर बायडन यांच्यात टोकियो इथे अत्यंत सौहार्दपूर्ण आणि फलदायी बैठक झाली आहे. याआधी या दोन नेत्यांमध्ये सप्टेंबर 2021 वॉशिंग्टन DC येथे बैठक झाली होती. त्यानंतर G20 आणि COP26 या परिषदांच्या निमित्तानेही त्यांची भेट झाली होती. या भेटींमध्ये झालेल्या उच्चस्तरीय संवादालाच आताच्या बैठकीत पुढे नेण्यात आले. याआधी अलीकडेच दोनही नेत्यांमध्ये 11 एप्रिल 2022 रोजी आभासी स्वरूपात संवादही झाला होता. भारत अमेरिका यांच्यातील सर्वसमावेशक राजनैतिक जागतिक भागीदारी, लोकशाही मूल्ये, कायद्याचे राज्य यांच्याप्रती असलेल्या सामायिक कटिबद्धतेवर आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या कायद्यांप्रती असलेल्या विश्वासावर आधारलेली आहे. या बैठकीमध्ये दोनही नेत्यांनी विविध क्षेत्रात द्विपक्षीय अजेंडे पुढे नेण्याच्या प्रगतीविषयी समाधान व्यक्त केले. दोनही देशांनी मिळून भारत आणि अमेरिका यांच्यातील महत्वाच्या तसेच उदयोन्मुख तंत्रज्ञान विषयक संयुक्त उपक्रमाची सुरुवात केली. या उपक्रमामुळे दोनही देशांसाठी फलदायी ठरू शकेल असं सहकार्य करण्याची सुविधा मिळू शकेल. भारतातील राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय आणि अमेरिकेची राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ICET यांच्या माध्यमातून दोनही सरकारे विचारवंत आणि अभ्यासक तसेच उद्योग क्षेत्र यांच्यात दृढ संबंध निर्माण होऊ शकतील. विशेषतः कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कम्प्युटिंग, 5G किंवा 6G, बायोटेक, अंतराळ आणि सेमीकंडक्टर्स अशा क्षेत्रात एकत्रित काम करणे सुलभ होईल. भारत आणि अमेरिकेतील आरोग्य क्षेत्रात वाढत असलेले सहकार्य अधिक दृढ करत भारत आणि अमेरिकेने दीर्घकालीन लस कृती अभियानाला 2027 मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे दोनही देशातील लस विकसनासाठीचे आणि इतर तंत्रज्ञानाशी संबंधित संयुक्त जैव वैद्यकीय संशोधन देखील पुढे सुरू राहणार आहे. हा संवाद असाच पुढेही सुरू ठेवण्यास भारत आणि अमेरिका यांच्यातील भागीदारी उच्च स्तरावर नेण्यास दोन्ही नेत्यांनी सहमती दर्शवली आहे. यानंतर जाणून घेऊया पुढील बैठकीविषयीची बातमी. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जपानचे माजी पंतप्रधान योशिरो मारी आणि शिंझो आबे यांची जपानमध्ये टोकियो येथे भेट घेतली. योशिरो मोरी हे जपान इंडिया असोसिएशनचे विद्यमान अध्यक्ष आहेत, तर शिंझो आबे लवकरच या असोसिएशनचे अध्यक्षपद स्वीकारणार आहेत. JIA ची स्थापना 1903 झाली होती. JIA ही जपानमधील सर्वात जुन्या मैत्री संघटनांपैकी एक आहे. भारत आणि जपान यांच्यातील राजकीय, आर्थिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये देवाणघेवाण वाढवण्यासाठी योशिरो मोरी यांच्या नेतृत्वाखाली JIA ने दिलेल्या महत्वपूर्ण योगदानाचे पंतप्रधानांनी कौतुक केले. शिंझो आबे यांना त्यांच्या नवीन जबाबदारीसाठी पंतप्रधान मोदी यांनी शुभेच्छा दिल्या. तसेच JIA यापुढेही अशीच महत्वपूर्ण भूमिका पार पाडेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली. भारत आणि जपान यांच्यातील विशेष धोरणात्मक आणि जागतिक भागीदारीविषयी व्यापक स्तरावर यावेळी नेत्यांनी चर्चा केली. तसेच शांततापूर्ण, स्थिर आणि समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्रासाठी भारत आणि जपानच्या सामायिक दृष्टिकोनावरही यावेळी नेत्यांनी चर्चा केली. उभय देशातल्या लोकांमध्ये संबंध अधिक दृढ व्हावेत यासाठीच्या मार्गांवर चर्चा करण्यात आली. जाणून घेऊया कृत्रिम बुद्धिमत्तेविषयक घडामोड. भारतातील रस्ते वाहतूक अधिक सुरक्षित करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात AI या तंत्रज्ञानाचा वापर लवकरच केला जाऊ शकेल. रस्त्यावरील धोके ओळखून वाहनांच्या संभाव्य धडकेविषयी चालकांना वेळेत जागृत करणे, रस्ते सुरक्षेत अधिक सुधारणा करणे यासाठी एक वैशिष्ट्यपूर्ण कृत्रिम बुद्धिमत्ता दृष्टिकोन असलेला प्रकल्प रस्ते अपघात मोठ्या प्रमाणावर कमी करण्याच्या उद्देशाने नागपूर शहरात अंमलात आणला जात आहे. नागपूर इथला हा प्रकल्प तंत्रज्ञान आणि अभियांत्रिकीद्वारे रस्ता सुरक्षेसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता विषयक उपाययोजना ही वापरून चालकांना जागृत करेल. तसेच वाहन चालवताना अपघात प्रवण परिस्थिती शोधेल. याबाबत वाहन चालकांना प्रगत चालक सहाय्य व्यवस्थेच्या माध्यमातून माहिती दिली जाईल. सगळ्या रस्त्यांवरील वाहतुकीचे आणि इतर माहितीचे विश्लेषण करून या प्रकल्पात त्रुटी असलेली ठिकाणे शोधली जातील. काही ठिकाणे म्हणजे जिथे सहसा लक्ष दिले जात नाही अशा जीवघेण्या अपघातांची केंद्रे बनलेल्या ठिकाणांवर सातत्याने देखरेख ठेवली जाईल. आरेखन अभियांत्रिकीच्या मदतीने अपघात प्रवण ठिकाणे तसेच रस्ते पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा केली जाईल. आय रस्ते प्रकल्प आय हब फाउंडेशन भारतीय तंत्रज्ञान संस्था हैदराबाद तंत्रज्ञान नव उन्मेष केंद्र विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या मदतीने सुरू करण्यात आलेल्या डेटा बँक आणि डेटा सेवा यांच्या अंतर्गत आंतरशाखीय सायबर भौतिक व्यवस्था राष्ट्रीय मिशन अप्लाइड कृत्रिम बुद्धिमत्ता संशोधन संस्थेच्या म्हणजे INAI च्या मदतीने राबवण्यात येणार आहे. या प्रकल्पात CSIR CRRI आणि नागपूर महापालिका यांचाही सहभाग आहे. तसेच महिंद्रा आणि इंटेल उद्योग यात भागीदार आहेत. हे केंद्र मूळ आणि अप्लाइड विस्तारित डेटा चलित तंत्रज्ञानाचा समन्वय एकत्रीकरण आणि देशभरात प्रसार करण्याचे काम करते. भविष्यात संशोधक स्टार्टअप्स आणि उद्योग क्षेत्राला मुख्यत्वे लहान अंतराची वाहतूक आरोग्यसेवा तसेच स्मार्ट इमारती यासाठी या सर्वांचा वापर व्हावा म्हणूनही महत्वाचे स्रोत तयार करण्याचा प्राथमिक उद्देश यामागे आहे. आय रस्ते प्रकल्प आणखी एकमेव द्वितीय असण्याचे कारण म्हणजे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि तंत्रज्ञान वापरून भारतीय परिस्थिती अनुरूप आराखडा तयार करून प्रत्यक्ष उपाय शोधले जात आहेत. नागपूर शहरात सुरुवातीला अंमलबजावणी करून आय रस्ते प्रकल्प इतर शहरात देखील वापरण्याचे ध्येय आहे. यानंतर जाणून घेऊया हिंद प्रशांत क्षेत्राविषयीची बातमी. भारत ऑस्ट्रेलिया ब्रुनेई दारुसलाम इंडोनेशिया जपान कोरिया प्रजासत्ताक मलेशिया न्यूझीलंड फिलिपाईन्स सिंगापूर थायलंड अमेरिका आणि व्हिएतनाम हे हिंद प्रशांत क्षेत्रातले देश वाढत्या क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थेतील समृद्धता आणि विविधता मान्य करते. मुक्त खुल्या आणि निष्पक्ष सर्वसमावेशक परस्परांना जोडलेल्या लवचिक सुरक्षित आणि समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्रासाठी भारत वचनबद्ध आहे. यामध्ये शाश्वत आणि सर्वसमावेशक आर्थिक वृद्धी साध्य करण्याची क्षमता सुद्धा भारतात आहे. या क्षेत्रातल्या भारताचे आर्थिक धोरणाचे हितसंबंध एकमेकांमध्ये गुंफलेले आहेत. त्याचबरोबर भागीदारीमधील आर्थिक कटिबद्धता वाढवणे हे निरंतर वाढ शांतता आणि समृद्धीसाठी महत्वाचे आहे. त्यामुळेच हिंद प्रशांत आर्थिक मंचाची गरज पडते. या मंचाचा उद्देश आपल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये लवचिकता शाश्वतता सर्वसमावेशकता आर्थिक वृद्धी निष्पक्षपणा आणि स्पर्धात्मकता वाढवणे हा आहे. या उपक्रमाद्वारे हिंद प्रशांत क्षेत्रामध्ये सहकार्य स्थिरता समृद्धी विकास आणि शांतता यासाठी योगदान देण्याचे भारताचे ध्येय आहे. स्वच्छ ऊर्जा म्हणजे डीकार्बोरायझेशन पायाभूत सुविधा या पॅरिस कराराच्या उद्दिष्टांच्या अनुषंगाने भारत आपल्या अर्थव्यवस्थेला डीकार्बोनाइज करण्यासाठी आणि हवामानाच्या परिणामांना सामोरे जाण्यायोग्य स्वतःला बनवण्यासाठी स्वच्छ ऊर्जा तंत्रज्ञानाच्या विकासाला आणि उपाययोजनेला गती देण्याची योजना आखत आहे. तसेच पुरवठा साखळी कर आणि भ्रष्टाचाराला आळा आणत आहे. प्रादेशिक आर्थिक संपर्क यंत्रणा एकात्मकता वाढवण्याच्या दृष्टीने भारत आपल्या सामायिक हितसंबंधांना पुढे नेण्यासाठी भागीदारांमधील सल्ला वसलतींवर आधारित सहकार्याची अतिरिक्त क्षेत्र ओळखणे सुरू ठेवत आहे. भारताच्या वाणिज्य व्यापार आणि गुंतवणुकीच्या प्रवाहाला चालना देण्यासाठी संयुक्तपणे अनुकूल वातावरण तयार करण्यास हिंद प्रशांत क्षेत्रातील देश उत्सुक आहेत. वळूया राज्यातील बातमीकडे. नौदलाच्या पश्चिम विभागाच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी अर्थात व्हाईस ऍडमिरल अजेंद्र बहादूर सिंग यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची मुंबईतील राज्य अतिथीगृहावर भेट घेतली आहे. भारतीय नौदलाच्या महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या उपक्रमांसह संपूर्ण सागरी सुरक्षा वाढवण्यासाठी नौदलाच्या अलीकडील प्रयत्नांची आणि उपक्रमांची माहिती मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आली. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त भारतीय नौदलातर्फे आयोजित विविध उपक्रमांसह नौदलाच्या नियोजित उपक्रमांवरही यावेळी चर्चा करण्यात आली. भारतीय नौदलाच्या भूमिकेविषयी आणि योगदानासंबंधी मुख्यमंत्र्यांनी प्रशंसा केली. नौदलाच्या सर्व प्रलंबित समस्या वेळेत सोडवण्याचेही त्यांनी मान्य केले. या बैठकीदरम्यान राज्य सरकार, मुंबईकर आणि भारतीय नौदल यांच्यात घनिष्ठ संवाद वाढवण्यासाठीच्या विविध पर्यायांसह नौदल आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यातील समान हिताच्या विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. वळूया पुढील बातमीकडे. दक्षिण प्रशांत क्षेत्राबाबत द्विपक्षीय पातळीवर तसंच समविचारी देशांसोबत भारत आणि अमेरिकेचे विचार एकसारखे आहेत असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. क्वाड देशांच्या शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी टोकियोमध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा केली. यावेळी ते बोलत होते. पंतप्रधान मोदी यांनी ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज आणि जपानचे पंतप्रधान फुमियो किशिदा यांच्याशी सुद्धा द्विपक्षीय चर्चा केली. दोनही देशांमधील विविध पातळ्यांवरील सहकार्य वाढवण्याबाबत यावेळी उभय नेत्यांनी सहमती व्यक्त केली. तत्पूर्वी झालेल्या क्वाड नेत्यांच्या शिखर परिषदेत बोलताना मोदी यांनी क्वाडचं महत्व अधोरेखित केलं. क्वाड देशांमधला परस्पर विश्वास आणि दृढ संकल्प लोकशाही शक्तींना नवी ऊर्जा देत आहे असं मोदी म्हणाले. दरम्यान जपानचा यशस्वी दौरा आटपून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आता मायदेशी परतले आहेत. यानंतर जाणून घेऊया एक थरकाप उडवणारी बातमी. अमेरिकेतल्या टेक्सास राज्यात एका 18 वर्षीय मुलानं केलेल्या गोळीबारात 18 शालेय विद्यार्थी आणि 3 शिक्षक मृत्यूमुखी पडले आहेत. मृतांची ही आकडेवारी वाढू शकण्याची शक्यता असल्याचंही सांगितलं जात आहे. टेक्सासच्या उवाल्ड इथल्या प्राथमिक शाळेत ही दुर्घटना घडली. या दुर्घटनेत मरण पावलेले शालेय विद्यार्थी हे 7 ते 10 वर्षे वयोगटातले असून इयत्ता 2 ते 4 मध्ये शिकत होते. टेक्सासचे राज्यपाल ग्रेग अबॉट यांनी ही माहिती दिली आहे. जवळपास 1 दशकापूर्वी कनेक्टिकटच्या न्यूटाऊन इथल्या सँडी हुक एलिमेंटरी येथेही अशी प्राणघातक गोळीबाराची घटना घडली होती. त्याआधीच 10 दिवसांपूर्वी न्यूयॉर्कमध्ये बफेलो इथं एका दुकानात 10 जणांना एका बंदूकधाऱ्यानं गोळ्या घालून ठार केलं होतं. अमेरिकेत या घटना सातत्याने वाढत असल्याने जगभरात चिंता व्यक्त केली जात आहे. जाणून घेऊया पुढील बातमी. मणिपूरमध्ये राज्यस्तरीय शिरुई लिली उत्सवाला सुरुवात झाली आहे. मणिपूरचे राज्यपाल ला गणेशन आणि मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंग यांच्या हस्ते उखरुल जिल्ह्यातील शिरुई गावात या उत्सवाचं उद्घाटन झालेलं आहे. या वार्षिक महोत्सवाचे आयोजन मणिपूर राज्य सरकारच्या पर्यटन विभागातर्फे करण्यात आलं आहे. मणिपूरचं राज्यपुष्प असलेल्या शिरुई लिली या फुलाबद्दल जागरूकता निर्माण करण्याच्या उद्देशानं हा उत्सव आयोजित करण्यात येतो. यानंतर जाणून घेऊया दगडूशेठ हलवाई येथील बातमी. पुण्यातल्या लक्ष्मीबाई दगडूशेठ हलवाई दत्त मंदिर ट्रस्टच्या शतकोत्तर रौप्य महोत्सवी वर्षाचा प्रारंभ उद्या म्हणजे शुक्रवारी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आणि माजी राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत होणार आहे. ट्रस्टचे अध्यक्ष ऍडव्होकेट प्रताप परदेशी यांनी पुण्यात पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. त्यानंतर जाणून घेऊया 1993 सालच्या मुंबई बॉम्बस्फोटाविषयीची घडामोड. केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग अर्थात CBI 1993 च्या मुंबई बॉम्बस्फोट हल्ल्यात कधीतरीत्या सहभागी असलेल्या 4 जणांना ताब्यात घेतलं आहे. 12 मे रोजी गुजरातच्या दहशतवाद विरोधी पथकानं या 4 जणांना ताब्यात घेतलं आहे. 12 मार्च 1993 मधील या भीषण साखळी बॉम्बस्फोटामध्ये 257 लोक मारले गेले होते. 700 हून अधिक जखमी झाले होते. या दहशतवादी हल्ल्यानंतर सुमारे 30 वर्षांनी हे आरोपी पकडण्यात आले आहेत. वळूया आजच्या शेवटच्या बातमीकडे. ही बातमी आहे आरोग्यविषयक बातमी. मंकी पॉक्स या आजाराचा पहिला रुग्ण सापडलेलं संयुक्त अरब अमिरात हे पहिलंच आखाती राष्ट्र ठरलं आहे. जेक प्रजासत्ताक आणि स्लोवेनिया या 2 राष्ट्रांमध्ये या आजाराचा पहिला रुग्ण आढळून आला असून मूळचा आफ्रिकेचा असलेला हा आजार शेजारील 18 राष्ट्रांमध्ये आढळून आला आहे. रुग्णांची संख्या वाढू शकेल असा अंदाज वर्तवण्यात आला असून हा आजार धोकादायक नसून काळजी घेण्याचा सल्ला मात्र तज्ज्ञांनी दिला आहे. युरोप, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेतही या रोगाचा प्रसार होत असल्याचं तज्ज्ञांनी सांगितलं आहे. या आजाराची ताप आणि पुरळ अशी सामान्य लक्षणं असून हा आजार धोकादायक नसल्याचंही तज्ज्ञांनी म्हटलं आहे. विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींनो, आज अशा पद्धतीने आपण चालू घडामोडींचा आढावा घेतला आहे. पुन्हा भेटूया पुढील सत्रात. तोपर्यंत स्टे ट्यून टू रेडिओ MPSC गुरु, स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी. धन्यवाद.
नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सुन रहे रेडियो एमपीएससी गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। मैं आर्य उद्धव आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा सत्र में। चलो दोस्तों, सुनते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा में। हमारी पहली अपडेट है 690 करोड़ रुपए में रुचि सोया द्वारा पतंजलि खाद्य कारोबार का अधिग्रहण। खाद्य तेल क्षेत्र की प्रमुख कंपनी रुचि सोया ने घोषणा की है कि वह पतंजलि आयुर्वेद के खाद्य कारोबार का करीब 690 करोड़ रुपए में अधिग्रहण कर रही है। इससे रुचि सोया के फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कैटेगरी में शिफ्ट होने में तेजी आने की उम्मीद है। नियामकीय मंजूरी के बाद रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड का नाम बदलकर पतंजलि फूड्स लिमिटेड कर दिया जाएगा। अधिग्रहित खाद्य व्यवहार में घी, शहद, मसाले, जूस जैसे आटे सहित 21 उत्पाद शामिल है। कंपनी के एक सूत्र के अनुसार रुचि सोया पतंजलि आयुर्वेद को वार्षिक रॉयल्टी का भुगतान करेगी, जो हस्तांतरण समझौते के तहत उत्पाद के सकल कारोबार का 1% है। स्रोत के अनुसार यह एक ऋण मुक्त हस्तांतरण है और रुचि सोया आंतरिक स्रोतों के माध्यम से अधिग्रहण का वित्त पोषण करेगी। बढ़ते अगले अपडेट की ओर, अश्विनी वैष्णव ने लेह लद्दाख में NIELIT केंद्र खोला। श्री अश्विनी वैष्णव केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान केंद्र लेह एक्सटेंशन सेंटर कारगिल और हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र के लिए IT सक्षम कनेक्शन केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह लीड कैंपस लेह में आयोजित किया गया था। केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने लेह कारगिल और लेह में इंक्यूबेशन केंद्र में नीलीट केंद्रों का उद्घाटन करते हुए बताया कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और नए केंद्र शासित प्रदेश के गठन के बाद इस क्षेत्र में विकास के रास्ते कई गुना खुल गए हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के विकास के लिए IT शिक्षा प्रशिक्षण इंक्यूबेशन से संबंधित किसी भी प्रस्ताव को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा तुरंत मंजूरी दी जाएगी। बढ़ते अगली अपडेट की ओर, सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी की हत्या के संदिग्ध को रिहा करने का आदेश दिया। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया है। निचली अदालत द्वारा मामले में पेरारिवलन को मौत की सजा सुनाए जाने के 24 साल बाद और शीर्ष अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के 2 महीने बाद यह आदेश आया है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के 21 मई को तमिलनाडु में एक आत्मघाती बम हमले में मारे जाने के हफ्तों बाद पेरारिवल ने 11 जून 1951 को गिरफ्तार किया था। संविधान का अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए हम निर्देश देते है कि अपीलकर्ता माना जाता है कि उसने अपराध के संबंध में सजा काट ली है। अपीलकर्ता जो पहले से ही जमानत पर है उसको तुरंत रिहा किया जाता है, उसकी जमानत रद्द कर दी जाती है। शीर्ष अदालत ने यह आदेश दिया। अगली अपडेट की ओर बढ़ते ही अपडेट है नियुक्ति की ओर। BSE ने RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर SS मुंद्रा को अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया। प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने कहा कि उसको कोई बोर्ड के एक रिपब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर SS मुंद्रा को एक्सचेंज का अध्यक्ष नियुक्त किया है। SS मुंद्रा 3 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद 30 जुलाई 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने वित्तीय स्थिरता बोर्ड और इसकी विभिन्न समितियों में RBI के नॉमिनी के रूप में भी कार्य किया। वह वित्तीय शिक्षा पर OECD के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के उपाध्यक्ष भी थे। मुंद्रा न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन की जगह लेंगे, यह सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर SS मुंद्रा की नियुक्ति पर विचार और मंजूरी दे दी। नियुक्त सेबी द्वारा अनुमोदन के अधीन है, BSE ने एक नियामक फाइलिंग में ये कहा। बढ़ते अगले अपडेट की ओर, ये अपडेट है योजनाओं के बारे में। केंद्र ने भारतीय कपास परिषद में गठन की घोषणा। केंद्र सरकार ने जाने माने कपास पुरुष सुरेश भाई कोटक की अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की है। इसमें कपड़ा, कृषि, वाणिज्य तथा वित्त मंत्रालय और भारतीय कपास परिषद तथा कपास अनुसंधान परिषद के प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रस्तावित परिषद की पहली बैठक इसी माह की 28 तारीख को निर्धारित की गई है। परिषद इस क्षेत्र में एक ठोस सुधार लाने के लिए चर्चा, विस्तार, विचार विमर्श और एक मजबूत कार्य योजना तैयार करेगी। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में आयोजित कपास मूल्य श्रृंखला के हितधारकों के साथ बैठक के दौरान यह घोषणा की गई। बैठक में कपास और धागे के मूल्य में तत्काल आधार पर कमी के लिए विभिन्न वर्गों के विचारों को और सुझावों पर विचार विमर्श किया गया, ताकि मौजूद मौसम में अभूतपूर्व मूल्य वृद्धि की समस्या से निपटा जा सके। बढ़ते अगली अपडेट की ओर, अपडेट है खेल के बारे में। LSG के पास अब IPL इतिहास में सबसे बड़ी ओपनिंग। ये पार्टनरशिप के बारे में अपडेट है। लखनऊ सुपर जायंट्स के सलामी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक और KL राहुल के इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी दर्ज की। आईपीएल में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी टीम ने पहले बल्लेबाजी करने और 20 ओवर पूरे करने के बाद ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं तोड़ी। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ एक मैच में क्विंटन डीकॉक ने 70 गेंदों में नाबाद 140 रनों की पारी खेली, जबकि केएल राहुल ने नाबाद 68 रनों की पारी खेलकर 20 ओवरों में 210 रन की साझेदारी के साथ एक नया आईपीएल रिकॉर्ड बनाया। यह अब आईपीएल में दूसरी सबसे बड़ी नाबाद साझेदारी है। इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी का रिकॉर्ड जॉनी बेयरस्टो और डेविड वार्नर के पास था, जिन्होंने 2019 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ सनराइज हैदराबाद के लिए 185 रन जोड़े थे। अगले अपडेट है दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दिया इस्तीफा। सूत्रों ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी अनिल बैजल ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस्तीफा सौंप दिया है। नजीब जंग के अचानक इस्तीफे के बाद 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभालने वाले बैजल ने 5 साल और 4 महीने का अधिक का लंबा कार्यकाल पूरा किया है। बैजल को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में गृह सचिव नियुक्त किया गया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीआई सरकार ने उन्हें शहरी विकास मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया, जहां उन्होंने 60,000 करोड़ रुपए के जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन की योजना और कार्यान्वयन का निरीक्षण किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कला में मास्टर डिग्री प्राप्त करने वाले बैजल फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस के महासचिव थे। अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। अपडेट है पीयूष गोयल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की चौथी बैठक। वाणिज्य और उद्योग उपभोक्ता मामले द्वारा खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने दिल्ली में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की चौथी बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर बोलते हुए मंत्री ने स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास में निरंतर सरकारी सहायता का आश्वासन किया। उन्होंने NSAC सदस्यों द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की और उनसे Tier 2 और Tier 3 शहरों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया, जहाँ सीमित मात्रा में उद्यम पूंजी निवेश उपलब्ध है। उन्होंने ऐसे शहरों में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार की विभिन्न पहलों के बारे में क्षमता निर्माण और जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। परिषद ने स्टार्टअप इकोसिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर विचार किया, जिनमें से मूल प्रमोटरों के साथ स्टार्टअप के स्वामित्व की रक्षा करना, भारत में शामिल करना, भारत में सूचीबद्ध होना, नवाचार हब विकसित करना आदि शामिल है। अगले अपडेट की ओर बढ़ते अपडेट है नियुक्ति के बारे में। भारतीय एयरटेल ने 5 साल के लिए गोपाल विट्ठल को MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया। दूर संचार कंपनी भारती एयरटेल इंडिया ने कहा कि उसके बोर्ड ने गोपाल विट्ठल को 31 जनवरी 2028 को समाप्त होने वाली 5 साल के एक और अवधि के लिए प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया है। हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि मानव संसाधन और नामांकन समिति की सिफारिशों के आधार पर और शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन निर्देशक मंडल ने 5 वर्षों की अवधि के लिए यानी 1 फरवरी 2023 से 31 फरवरी 2028 तक 5 प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में नामित प्रबंध निदेशक गोपाल विट्ठल की फिर से नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। एयरटेल ने स्टॉक एक्सचेंज को एक नोटिस में कहा, पुनर्नियुक्ति ऐसे दिन हुई जब दूरसंचार कंपनी ने मार्च तिमाही के समेकित शुद्ध लाभ 2007.8 करोड़ रुपए पर दर्ज किया, जो क्रमिक रूप से 141% और साल पर 164% अधिक था। बढ़ते अगली अपडेट की ओर, अपडेट आखिरी अपडेट है पुरस्कार के बारे में। अजय पिरामिल को मिला ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड। पिरामिल समूह के अध्यक्ष अजय पिरामिल को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार मिला है। उन्हें यूके इंडिया सीईओ फोरम के भारतीय सह अध्यक्ष के रूप में यूके भारत व्यापार संबंध में उनकी सेवाओं के लिए पुरस्कार मिला। पिरामिल ने 2019 में लंदन में संयुक्त राष्ट्र और व्यापार समिति की बैठक, 2018 में राष्ट्रमंडल शासन अध्यक्षों की बैठक और 2016 में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री की भारत यात्रा में योगदान दिया था। पिरामिल ने श्रम गतिशीलता पर नीति को आकार देने वाले ब्रिटेन में भारतीय निवेश के लिए एक फास्ट ट्रैक तंत्र स्थापित करने और भारत में कोऑपरेटिव कर पर एक फास्ट ट्रैक तंत्र स्थापित करने में भी मदद की है, ब्रिटिश उप उच्चायोग ने यह बयान में कहा। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे डेली करंट अपडेट अफेयर्स हिंदी भाषा में। मैं आरजे उद्धव आपसे लेता हूँ अलविदा। ये कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए, सुनते रहिए रेडियो MPSC ग्रुप स्प्रेडिंग द नॉलेज पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी।
हेलो लिसनर्स, यू आर लिसनिंग टू रेडियो MPSC गुरु पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। दिस इज योर आरजे प्रियंका and I now welcome you to our daily current affairs updates dated 25th May 2022. So listeners, our first daily update belongs to the category of agreement. Patanjali food business will be acquired by Ruchi Soya for rupees 690 crore. Ruchi Soya, an edible oil company, has announced the acquisition of Patanjali Ayurved's food business for approximately rupees 690 crore. This is expected to accelerate Ruchi Soya's transition to the fast-moving consumer goods FMCG sector. After regulatory approvals, the name of Ruchi Soya Industries Limited will be changed to Patanjali Foods Limited. The acquired food company offers 21 different products including ghee, honey, spices, juices and flour. According to a company source, Ruchi Soya will pay Patanjali Ayurved an annual royalty estimated at 1% of the gross turnover of the products under the transfer agreement. According to the source, it is a debt-free transfer and Ruchi Soya will fund the acquisition through internal accruals. Let's move on to our daily update number 2, which belongs to the category of state. Ashwini Vaishnav opened NIELIT Center in Leh, Ladakh. Union Cabinet Minister of Electronics and Information Technology, Shri Ashwini Vaishnav, virtually inaugurated the National Institute of Electronics and Information Technology, NIELIT Center, Leh Extension Center, Kargil, an IT-enabled incubation center for handicraft and handloom sector. The inauguration ceremony was held at NIELIT campus in Leh. While inaugurating the NIELIT centers in Leh and Kargil, as well as the incubation center in Leh, Union Minister Shri Ashwini Vaishnav stated that since the repeal of Article 370 and the formation of new UTs, the path of development in this area has opened up vastly. The Ministry of Electronics and Information Technology will immediately approve any proposal related to IT education, training and incubation for the development of the UT of Ladakh. Let's move on further to our third daily update, which belongs to the category of national. Supreme Court has ordered the release of Rajiv Gandhi's assassination suspect. The Supreme Court, using its special powers under Article 142 of the Constitution, ordered the release of A.G. Perarivalan, one of the 7 convicts in the Rajiv Gandhi assassination case. The order came 24 years after a lower court sentenced Perarivalan to death in the case and 2 months after the Supreme Court granted him bail. Perarivalan was apprehended on June 11, 1991, just weeks after former Prime Minister Rajiv Gandhi was assassinated in a suicide bombing in Tamil Nadu on May 21, 1991. In exercise of our power under Article 142 of the Constitution, we direct that the appellant is deemed to have served the sentence is in connection with the crime. The appellant, who is already on bail, is set at liberty forthwith. His bail bonds are cancelled, the apex court ordered. Our fourth daily update belongs to the category of appointment. BSE appointed ex-RBI Deputy Governor S.S. Mundra as chairman. Leading stock exchange, the Bombay Stock Exchange, BSE, has announced its board of directors has appointed S.S. Mundra, a public interest director, as chairman of the exchange. S.S. Mundra retired as deputy governor of the Reserve Bank of India on July 30, 2017, after a 3-year tenure. He was also the RBI's representative on the Financial Stability Board, G20 Forum, and its various committees. In addition, he served as vice chair of the OECD's International Network on Financial Education, INFE. Mundra will take over for Justice Vikramjit Sen. This is to inform that the board of directors of the company on Monday had considered and approved the appointment of S.S. Mundra, public interest director, as the chairman of the board of directors of the company, subject to approval of SEBI, BSE said in a regulatory filing. Let's move to our daily update number 5 that belongs to the category of schemes and committees. Center announces formation of Cotton Council of India. The Union Government has announced the establishment of the Cotton Council of India, which will be led by renowned veteran cotton man Suresh Bhai Kotak. It will have representation from textiles, agriculture, commerce and finance ministries, along with Cotton Corporation of India and Cotton Research Institute. The proposed council's first meeting is scheduled for the 28th of this month. The council will deliberate, discuss and prepare a strong action plan to bring about tangible improvements in this field. The announcement was made during a meeting with cotton value chain stakeholders presided over by Union Textiles Minister Piyush Goyal. During this meeting, a variety of perspectives and suggestions were discussed in order to address the unprecedented price rise seen this season by softening cotton and yarn prices as soon as possible. Our daily update number 6 belongs to the category of sports. LSG now have the highest opening partnership in IPL history. Quinton de Kock and KL Rahul of the Lucknow Super Giants LSG recorded the highest first wicket partnership in Indian Premier League history. This is the first time in IPL history that an opening partnership has lasted 20 overs after a team batted first. Quinton de Kock hit an unbeaten 140 off 70 balls and KL Rahul smashed 68, not out to set a new IPL record with their 210 run stand in 20 overs against Kolkata Knight Riders. This is now the IPL's second most unbeaten partnership. The record for the highest opening partnership in the Indian Premier League was held by Johnny Bairstow and David Warner, who had added 185 for Sunrisers Hyderabad against Royal Challengers Bangalore in 2019. Let's move to our next update, that is update number 7, which belongs to the category of miscellaneous. Delhi LG Anil Baijal submits resignation to President Ramnath Kovind. According to sources, Delhi Lieutenant Governor LG Anil Baijal resigned for personal reasons and has submitted his resignation to President Ramnath Kovind. Baijal, who took over the office on December 31, 2016, following the unexpected resignation of Najib Jung, has been in office for more than 5 years and 4 months. Baijal was appointed Home Secretary in the Atal Bihari Vajpayee administration. The Congress-led UPA government transferred him to the Urban Development Ministry, where he oversaw the planning and implementation of the 60,000 crore Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission. Baijal was the Secretary General of the Federation of Indian Airlines FIA and held a master's degree in arts from Allahabad University. Our next daily update, that is update number 8, belongs to the category of summits and conferences. National Startup Advisory Council's fourth meeting chaired by Piyush Goyal. Shri Piyush Goyal, Ministry of Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Textiles presided over the fourth meeting of the National Startup Advisory Council, NSAC, in New Delhi. Speaking on the occasion, the minister pledged the government's continued support for the development of the startup ecosystem. He praised the work of NSAC members and urged them to focus on Tier 2 and Tier 3 cities where limited amount of venture capital investment is available. He also emphasized the importance of capacity building and raising awareness about various government initiatives to promote startups in such cities. The council deliberated on critical startup ecosystem issues such as protecting startup ownership with original promoters, incorporating in India, listing in India, developing innovation hubs, and so on. Our next daily update, that is update number 9, belongs to the category of appointment. Bharti Airtel reappoints Gopal Vittal as MD and CEO for 5 years. Bharti Airtel, India's second largest telecom company, announced that Board of Directors has reappointed Gopal Vittal as Managing Director and CEO for a 5-year term ending January 31, 2028. We wish to inform you that based on the recommendations of HR and Nomination Committee and subject to the approval of shareholders, the Board of Directors has approved the reappointment of Gopal Vittal, Managing Director designated as Managing Director and CEO for a further period of 5 years, that is from February 1, 2023 to January 31, 2028, Airtel said in a notice to stock exchanges. The reappointment came on the same day that the telecom company reported consolidated net profit of ₹2,007.8 crore in the March quarter, an increase of 141% sequentially and 164% year on year. Our next and last daily update, that is update number 10, belongs to the category of awards. Ajay Piramal receives Order of the British Empire Award. Queen Elizabeth II bestowed an honorary commander of the Order of the British Empire CBE award on Ajay Piramal, chairman of the Piramal Group. He was recognized for his contributions to the UK-India trade relationship as the Indian co-chair of the UK-India CEO Forum. Piramal had contributed to the 2019 Joint Economic and Trade Committee JETCO meeting in London, the 2018 Commonwealth Heads of Government meeting, and the UK Prime Minister's visit to India 2016. Piramal has also helped shape policy on labour mobility, setting up a fast-track mechanism for Indian investments in the UK and on corporate tax in India, according to a statement from the British Deputy High Commission. So with this daily update, we come to the end of our daily current affairs updates, 25th May 2022. For more like this, stay connected to Radio MPSC Guru, powered by Spectrum Academy. Thank you.
Namaskar, aap sun rahe Radio MPSC Guru, spreading the knowledge powered by Spectrum Academy par daily current affairs quiz Hindi bhasha mein. Main RJ Uddhav aap sabhi ka tahe dil se swagat karta hu daily current affairs quiz Hindi bhasha ke karyakram mein. Chaliye dosto, badhte hain hamare daily current affairs quiz ki aur. Ye pehli quiz hai drone aur उड़ाने वाली कारों के लिए दुनिया के पहले शहरी हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसके विकल्प है ए कोवेंट्री इंग्लैंड, बी मोक्चो वियतनाम, सी ओकासा जापान, डी समारा रूस. सही उत्तर है ए ड्रोन और उड़ने वाली कारों के लिए दुनिया का पहला शहरी हवाई अड्डा कोवेंट्री इंग्लैंड में स्थित है. बढ़ते अगले सवाल की ओर. ये सवाल है औद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2022 में थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति कितनी प्रतिशत तक पहुँच गई है? इसके विकल्प है ए 15.8%, बी 13.58%, सी 13.12%, डी 10.74%. इसका सही जवाब है ए 15.8%. औद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार थोक मूल्य मुद्रास्फीति अप्रैल में 15.8% तक पहुंच गई, जो सितंबर 1951 के बाद से सबसे अधिक है. बढ़ते अगले प्रश्न की ओर. अप्रैल 2022 में भारत में खुदरा मुद्रास्फीति में कितनी वृद्धि हुई है? इसका सही जवाब है बी 7.79% के 8 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई है, जो खाद्य ईंधन और मुख्य क्षेत्रों में कीमतों के दबाव में व्यापक आधार पर वृद्धि पर थी। बढ़ते अगले सवाल की ओर, निम्नलिखित में से किसने रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त भार संभाला। इसके विकल्प है ए संजय कुमार, बी राकेश रंजन, सी अरुण सिन्हा, डी आनंद कुमार सिन्हा। इसका सही जवाब है सी अरुणा सिंह। श्रीमती अरुणा सिंह को रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते अगली क्विज की ओर, भारतीय नौसेना ने निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ स्वदेश में विकसित नौसेना एंटी शिप मिसाइल का सफल पहला उड़ान परीक्षण किया है। इसके विकल्प है ए BEL, बी DRDO, सी HALHL, डी ISRO इसरो। इसका सही जवाब है बी DRDO। DRDO और भारतीय नौसेना के एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुरा उड़ीसा ने एक नौसेना हेलीकॉप्टर से स्वदेशी रूप से विकसित नौसेना एंटी शिप मिसाइल का सफल पहला उड़ान परीक्षण किया है। बढ़ते अगले अपडेट की ओर, भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षक विमान हंसा इंजिन निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विकसित किया गया था। इसके विकल्प है ए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सी CSIRNAL अर्थात वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, डी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। इसका सही जवाब है सी CSIRNAL, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा डिजाइन और विकसित दो सीटों वाले फ्लाइंग ट्रेनर विमान हंसा एनजी के कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में इन फ्लाइंग एजेंट रिलाइड परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, ये प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश स्थायी परिस्थिति के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला पक्षी महोत्सव आयोजित करने जा रहा है। इसके विकल्प है मध्य प्रदेश, बी केरल, सी कर्नाटक, डी जम्मू और कश्मीर। इसका सही जवाब है डी जम्मू और कश्मीर। स्थायी परिस्थिति के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में अपनी तरह का पहला पक्षी महोत्सव जल्द ही आयोजित किया जा रहा है। अगले क्विज है, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया गया। इसके विकल्प है 15 मई, बी 16 मई, डी 17 मई, सी 18 मई। इसका सही जवाब है सी 18 मई। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस को HIV वैक्सीन जागरूकता के दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 18 मई को मनाया जाता है। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई को मनाया जाता है। बढ़ते अगली अपडेट की ओर, निम्नलिखित में से किसने रॉयल इनफील्ड के नए CEO के रूप में कार्यभार संभाला। इसके विकल्प है ए एस गोविंद राजन, बी आर गोविंद राजन, सी बी गोविंद राजन, डी ए गोविंद राजन। इसका सही जवाब है सी बी गोविंद राजन। आयशर मोटर्स लिमिटेड ने बी गोविंद राजन को रॉयल एनफील्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। बढ़ते हैं अपने आखिरी क्विज की ओर, निम्नलिखित में से किसने लेह में नीलीड केंद्र का उद्घाटन किया है। इसके विकल्प है ए अमित शाह, बी अश्विनी वैष्णव, सी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डी PM मोदी। इसका सही विकल्प और जवाब है बी अश्विनी वैष्णव। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने लेह में नीलीड केंद्र का उद्घाटन किया। तो दोस्तों, हमारे डेली करंट अफेयर्स क्वीज हिंदी भाषा में यही पे समाप्त होते हैं। मैं आरजे उद्धव आपसे इजाजत लेता हूँ। मिलते हैं अपने अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो MPSC गुरु, स्प्रेडिंग द नॉलेज पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी।
हेलो लिसनर्स, यू आर लिसनिंग टू रेडियो MPSC गुरु पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। दिस इज योर आरजे प्रियंका वेलकमिंग यू टू आवर डेली करंट अफेयर्स क्विज प्रोग्राम 25th May 2022। Let's start with our first question, that is question number 1. Where did the world's first urban airport for drones and flying cars was inaugurated? Is it A, Coventry, England? Is it B, Mokcha, Vietnam? Is it C, Osaka, Japan? Or is it D, Samara, Russia? The correct answer for the question is A, the world's first urban airport for drones and flying cars is located in Coventry, England. Let's move to our question number 2. According to the Department for Promotion of Industry and Internal Trade data, how much wholesale price index WPI inflation reached in April 2022? Is it A, 15.08%? Is it B, 13.98%? Is it C, 13.12%? Or is it D, 10.74%? Correct answer for the question is A. According to the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, wholesale price inflation hit 15.08% in April, the highest since September 1991. Let's move further to our question number 3, which is, how much the retail inflation in India was increased in April 2022? Is it A, 8.38%? Is it B, 7.79%? Is it C, 7.66%? Or is it D, 6.12%? Correct answer for the question is B. An official data showed inflation based on consumer price index scaling an 8-year high of 7.79% in April on a broad-based rise in price pressure across food, fuel and core segments. Let's move on further to the question number 4 of this quiz, which is, who among the following took the additional charge of chairman and managing director of RailTel Corporation of India Limited? Is it A, Sanjay Kumar? Is it B, Rakesh Ranjan? Is it C, Aruna Singh? Or is it D, Anand Kumar Singh? The correct answer for the question is C. Mrs. Aruna Singh has been appointed as new chairman and managing director of RailTel Corporation of India Limited, RCIL. Let's move on further to our question number 5 of this quiz, which is, Indian Navy along with which of the following organization has conducted a successful maiden flight test of indigenously developed naval anti-ship missile? Is it A, BEL? Is it B, DRDO? Is it C, HAL? Or is it D, ISRO, ISRO? The correct answer for the question is B. DRDO and Indian Navy has conducted successful maiden flight test of indigenously developed naval anti-ship missile from a naval helicopter from Integrated Test Range, ITR, Chandipur, Odisha. Let's move further to our question number 6. India's first indigenous trainer aircraft, Hansa NG, was developed by which of the following organization? Is it A, Hindustan Aeronautics Limited? Is it B, Defense Research and Development Organization? Is it C, CSIR NAL? Is it D, Bharat Dynamics Limited? The correct answer for the question is C, Hansa NG, a two-seater flying trainer aircraft designed and developed by CSIR NAL, has successfully completed in-flight engine relight test in the Chitradurga district of Karnataka. Our next question, that is question number 7 for the quiz, is, which of the following state or union territory is going to be organizing its first ever bird festival to promote sustainable ecotourism? Is it A, Madhya Pradesh? Is it B, Kerala? Is it C, Karnataka? Or is it D, Jammu and Kashmir? The correct answer for the question is D. A first of its kind bird festival in the Union Territory of Jammu and Kashmir is going to be organized soon to promote the sustainable ecotourism. Our next question, that is question number 8 for the quiz, is, when the World AIDS Vaccine Day was observed? Is it A, 15th May? B, 16th May? C, 17th May? Or D, 18th May? The correct answer for the question is D. World AIDS Vaccine Day, also known as HIV Vaccine Awareness Day, is observed annually on May 18. Our next question, that is question number 9, is, who among the following took charges as the new CEO of Royal Enfield? Is it A, S. Govindarajan? इज इट बी आर गोविंदराजन, सी बी गोविंदराजन और डी ए गोविंदराजन? करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज सी. आयशर मोटर्स लिमिटेड EML has announced the appointment of B. Govindarajan as the Chief Executive Officer of Royal Enfield. Let's move to the last and 10th question of our quiz today. Who among the following has inaugurated NIELIT Center at Leh? Is it A. Amit Shah? Is it B. Ashwini Vaishnav? Is it C. Dr. Jitendra Singh? Or is it D. PM Modi? The correct answer for the question is B. Union Cabinet Minister of Electronics and Information Technology, Shri Ashwini Vaishnav has inaugurated NIELIT Center at Leh. So this brings us to the end of our daily current affairs quiz 25 May 2022. For more, please stay connected to Radio MPSC Guru, powered by Spectrum Academy. Thank you.